भूरिणी भूरि कर्माणि श्रोतव्यानि विभागशः अतः साधोत्र यत्सारं समुद्धृत्य मनीषया ब्रूहि भद्राय भूतानां येनात्मा सुप्रसीदति। भूरिणी भूरि कर्माणि अर्थात बहुत सारे शास्त्र हैं, भूरी मतलब बहुत सारे शास्त्र हैं और उन उन शास्त्रों में बहुत सारे कर्म बताए गए हैं, ये करो ये करो ये करो। सभी शास्त्र वस्तुतः जीव को मोक्ष प्रदान करने के लिए हैं, मतलब उसकी मुक्ति के लिए हैं, लेकिन इतने कर्म बताए गए हैं और श्रोतव्य यानी उसमें इतना कुछ सुनना है लंबे समय तक और उसमें अनेक अनेक विभाग हैं, तो इतना लंबा जीवन है नहीं। अर्थात जो दूसरे शास्त्र हैं वे बहुत विस्तृत हैं और उसमें बहुत सारे कर्मों का वर्णन किया गया है, ये सब इस पहली लाइन का अर्थ है। और उन सब में भी विभिन्न विभिन्न विभाग हैं, मतलब पहले कर्म कांड सुनो, उसके बाद उपासना कांड सुनो, फिर ज्ञान कांड सुनो, तो इन सबके लिए तो बहुत लंबा जीवन चाहिए। और जैसा पिछले श्लोक में सुना गया, कलयुग में तो लंबा जीवन है नहीं और बुद्धि भी इतनी विशुद्ध नहीं है, भाग्य साथ नहीं दे रहा है, इसलिए आप इस प्रश्न का कि सारे शास्त्रों का सार क्या है, आप अपनी बुद्धि के अनुसार उत्तर दीजिए। अतः साधोत्र यत सारम समुद्रतया मनीषया, अपनी बुद्धि से जो आपने निश्चित किया है उसको बताइए। तो वो सार क्या, उस सार कैसा होना चाहिए, सार का लाभ क्या होना चाहिए, ब्रूहि अर्थात हमसे कहिए, जिससे जीवों का सभी लोगों का भद्र हो, भद्र हो और साथ साथ जीवों की जो बुद्धि है वह सुप्रसिद्धि, आत्मा को प्रसन्नता प्राप्त हो। आत्मा करते यहाँ पे बुद्धि है, तो उनकी बुद्धि प्रसन्न हो और उनका परम कल्याण हो, ऐसा सार बताइए जो सारे शास्त्रों का सार हो, यह बताइए। श्रील प्रभुपाद जी का तात्पर्य है, अनुवाद है, शास्त्रों के अनेक विभाग हैं और उन सब में अनेक नियमित कर्मों का उल्लेख है, जिनके विभिन्न प्रभागों को वर्षों तक अध्ययन करके ही सीखा जा सकता है। अतः हे साधु, कृपया आप इन समस्त शास्त्रों का साथ चुनकर समस्त जीवों के कल्याण हेतु समझाएं, जिससे इस उस उपदेश से उनके हृदय पूरी तरह तुष्ट हो जाएं। तो अर्थ समझ रहे होंगे, इसका अर्थ ये है कि बहुत सारे शास्त्रों को पढ़ने में तो बहुत समय लगेगा, इतनी शक्ति है नहीं, तो इन शास्त्रों का वैसा सार बताइए जिससे जीवों का परम कल्याण हो अर्थात भद्राय, और जिससे उनका हृदय उनकी बुद्धि पूरी तरह संतुष्ट हो जाए अर्थात येनात्मा सुप्रसिद्धति, ये बताइए। यह दूसरा प्रश्न है। श्रील श्रीधर स्वामी की टीका, अतः साधोत्र यत सारम समुद्रतया मनीषया ब्रूहि भद्राय भूतानाम येनात्मा सुप्रसिद्धति। तो कह रहे हैं कि इन तमाम कारणों से अर्थात कलयुग में इतनी कष्ट है, इस कारण से आपने अपनी, हे सूजी, आपने अपनी मनीषा अर्थात निर्मल बुद्धि से जो सारभूत साधन साधन खोला निकाला हो या खोजा होगी, वही साधन प्राप्त करके, साधन का अवलंबन करके, साधन का आश्रय लेके श्रेय की प्राप्ति होगी, उसको आप हमें सुनाइए। ब्रूही ब्रूही मतलब बड़ी श्रद्धा से सुनना चाहते हैं, इसलिए हमें जरूर सुनाइए। तो मान लीजिए सूत्र गोस्वामी इस पर प्रश्न करें कि भाई क्यों सुनना चाहते हो, ऐसी जिद क्यों कर रहे हो, तो उस पर कहते हैं येनात्मा सुप्रसिद्धति, अर्थात ऐसा साधन साधन सुनना चाहते हैं जिससे आत्मा या बुद्धि प्रसन्न हो जाए, निश्चल हो जाए, पवित्र हो जाए, सुस्थिर हो जाए। न च बहु शास्त्र श्रवणेपि तावते व फल सिद्धिर इत्याहु, बहुत सारे शास्त्र सुनने से साधन का ज्ञान हो जाए ये बात निश्चित नहीं है। ऐसा क्यों है, तो कह रहे हैं, समझ रहे हैं ना मेरी बात, कि बहुत सारे शास्त्र पढ़ेंगे तो कोई कहेगा कर्म मार्ग श्रेष्ठ है, कोई कहेगा ज्ञान मार्ग श्रेष्ठ है, कोई ये श्रेष्ठ है वो श्रेष्ठ है, तो बहुत शास्त्र पढ़ करके तो केवल चित्त भ्रमित हो जाएगा। तो इसलिए कह रहे हैं, उस पर वो कहते हैं कि क्यों ऐसा होता है, तो कह रहे हैं भूरिणीति भूरिणी कर्माणि अनिष्ठे यानी येषुतानि, क्योंकि विभिन्न विभिन्न शास्त्रों में बहुत सारे कर्मों के अनुष्ठान का वर्णन है, जैसे 12 साल तक गायत्री का जप करो, ये करो वो करो, तो व्यक्ति भ्रमित हो जाता है, समझ नहीं पाता है। उसके बाद कहते हैं समुद्रित्या येनोद्धृत वचनेनात्मन बुद्धि संप्रसिद्धति सम्यक उपशाम्यति। तो समुद्रित मतलब सम्यक रूप से उद्धृत करें, अपने वचन के द्वारा बताएं स्पष्ट रूप से कि आत्मा की आत्मा अर्थात बुद्धि किससे संप्रसिद्धि अर्थात शांति को प्राप्त होती है, सम्यक उपशाम्यति। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि संसार के पदार्थ लोगों को प्राप्त हैं, बहुत अमीर अमीर लोग हैं, लेकिन क्या वो शांत हुए, क्या उन्हें चैन है? नहीं। तो बुद्धि तो कभी भोगों से शांत होती ही नहीं है, इसलिए यह प्रश्न तो इस प्रश्न का यह उत्तर तो होगा ही नहीं कि भोग से काम से बुद्धि शांत हो जाए, वो तो पहले से ही लोगों के पास प्राप्त है, उनकी बुद्धि शांत नहीं है। इसलिए ऐसा साधन बताइए जिससे बुद्धि को शांति प्राप्त हो, यह प्रश्न हुआ पहला। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी की टीका थोड़ी सी अलग है, जरा समझने का प्रयास कीजिए। वो कहते हैं कि श्रेय प्राप्ति के साधनों के में जो प्रमुख हो वह बताइए, और कली कालवर्ती जो कलियुग के लोग हैं उनके द्वारा सुशक्य हो, मतलब जो आसानी से कली काल में लोग कर सकें वह बताइए, उसके बारे में पूछ रहे हैं। अर्थात फिर से हम रिपीट करेंगे, परम श्रेय की प्राप्ति करने के लिए जो सर्वश्रेष्ठ साधन है, पहले तो ये बताइए कि परम श्रेय क्या है, और परम श्रेय की प्राप्ति करने के लिए सर्वश्रेष्ठ जो साधन है, जो मुख्य साधन है, और जो कली काल के लोगों के द्वारा आसानी से सुशक्य, बहुत आसानी से भजनीय है, भजन कर सकें उसका, कर सकें उस भजन को, तब वैसा साधन बताइए। भाई मान लीजिए साधन बहुत बढ़िया है लेकिन इतना मुश्किल है कि कोई कर ही ना पाए तो भी कोई फायदा नहीं है। तो दोनों ही चीज़ें होनी चाहिए कि सर्वश्रेष्ठ साधन होना चाहिए और बड़ी आसानी से संपादित हो जाना चाहिए, तो उसके बारे में पूछ रहे हैं। एक और अर्थ वो ले रहे हैं कि हमको उन शास्त्रों के बारे में बताइए जिनको सुना जाना चाहिए, और जो उन साधनों का वर्णन करते हैं, विभिन्न साधनों का वर्णन करते हैं जिसके द्वारा सर्वश्रेष्ठ श्रेय की प्राप्ति हो जाए, और वह श्रेय की प्राप्ति कराने के लिए जो विभिन्न प्रकार के साधन उन शास्त्र में बताए गए हैं उनमें भी विभिन्न प्रकार के कर्म हो। तो ये भूरि कर्माणी का अर्थ है कि हमको वह शास्त्र बताइए, थोड़ा अलग अर्थ दे रहे हैं, जिसमें विभिन्न विभाग हो, उसमें बहुत सारे कर्म बताए गए हों, लेकिन वह कर्म और बहुत सारे साधन बताए गए हों, लेकिन वह सब जो साधन ये कर्म हैं वह परम श्रेय की प्राप्ति कराने वाले हों और आत्मा को संतुष्ट कराने वाले हों। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि यह सारे जो क्रियाएं हैं वह हैं भगवान के श्रवण कीर्तन इत्यादि जो भक्ति है, मतलब हमें भक्ति के बारे में बताइए। और भक्ति 9 प्रकार की होती है, आप समझ गए, 9 प्रकार की हर भक्ति, ये तो आपने सुना होगा कि हर 9 जो प्रकार की भक्ति है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरण इत्यादि, उनमें से हर एक भक्ति परम श्रेय की प्राप्ति कराने वाली है। तो उसमें भी विभिन्न प्रकार के कर्म हैं, सुनने के लिए बहुत सारे भगवान के लीलाएं हैं, बहुत सारे चरित्र हैं, तो उन सब का वर्णन कीजिए। अर्थात आप समझ रहे होंगे, बहुत अच्छा अर्थ है, अर्थ ये है कि हमको भक्ति के बारे में बताइए और उसमें जो विभिन्न प्रकार के साधन हैं उनके बारे में बताइए, और उन साधनों में भी जो विभिन्न प्रकार की क्रियाएं हैं उनके बारे में बताइए, ताकि उसको करके हम भगवत प्राप्ति कर सकें, परम श्रेय की प्राप्ति कर सकें। तो यह सुंदर अर्थ श्रीलर्ष विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ले रहे हैं, और ये साधन है भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति। श्रील प्रभुपाद जी बड़ा सुंदर तात्पर्य लिख रहे हैं, और वो कहते हैं कि देखिए, आत्मा हमेशा भौतिक तत्वों से अलग है, वह पूर्णतः आध्यात्मिक है, और कभी भी भौतिक तत्वों के संयोजन से आत्मा का निर्माण नहीं होता है। तो जितने भी शास्त्र हैं, बहुत ध्यानपूर्वक सुनने वाली बात है, जितने भी शास्त्र हैं वह धीरे धीरे आत्मा को उस आध्यात्मिक तत्व में ले जाने के लिए निमित्त हैं, और विभिन्न समय में विभिन्न स्थानों में अलग अलग जीवों के अलग अलग अधिकार के अनुसार विभिन्न प्रकार के उपायों को बताया जाता है। इस समझ लेना चाहिए, जैसे मान लीजिए कर्मकांड है, तो कर्मकांड किसके लिए है? जिसकी बहुत भोग की रुचि है, बिल्कुल उसको समझ में नहीं आएगा कि वो आत्मा है, तो उसको ठीक है भोग का प्रलोभन देकर के शास्त्र की आज्ञा को मानने का के लिए प्रेरित किया जाता है। तो इस प्रकार से धीरे धीरे आप समझते ही हो, वह जब शुद्ध होगा तो समझ जाएगा कि भोग से मेरा सुख नहीं हो सकता, तो फिर वह ज्ञान कांड का आश्रय लेगा। फिर इस तरह से आकर के आगे जा करके वह शुद्ध होता चला जाएगा, फिर वह भगवान की भक्ति करने के लिए योग्य बन सकता है अगर भक्तों का संग प्राप्त होता है। तो आप देख सकते हैं कि अलग अलग जीवों का अलग अलग अधिकार है, अलग अलग श्रद्धा है, उस कारण से अलग अलग शास्त्र हैं। उन शास्त्रों में कोई हमें भर्सना नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्रमशः जीव के विकास के लिए ही है, उस जीव की क्या स्थिति है उसके ऊपर निर्भर करता है। इसलिए अलग अलग प्रकार के शास्त्र, अलग अलग प्रकार के कह सकते आज्ञाएं उन शास्त्रों के माध्यम से जीव को दी जा रही हैं। उद्देश्य यही है कि क्रमशः वह आत्म साक्षात्कार कर ले, ये बात श्रील प्रभुपाद जी समझा रहे हैं। तो इस कारण से बहुत सारे शास्त्र जो हैं वह उनकी संख्या जो है अनगणित है, और उनमें बहुत सारी विधि विधानों का पालन करने का तरीका बताया गया। तो वही बात यहाँ पे बोल रहे हैं कि कल काल में लोगों की उम्र बहुत कम है, इसलिए वो कह रहे हैं कि शास्त्रों का वह सार बताएं जिसके द्वारा पतित आत्माओं को का उद्धार हो जाए। और बहुत अच्छी बात प्रभुपाद कह रहे हैं कि इस समय लोगों के पास इतना समय नहीं है कि वे वर्णाश्रम का पालन कर सकें ठीक ठीक और शास्त्रों का उपदेश पढ़ें कि भाई मेरा क्या कर्तव्य। पहली बात तो शास्त्र पढ़ना ही नहीं चाहते, विश्वास ही नहीं है। तो वर्णाश्रम पद्धति के द्वारा क्रमशः विकास कलयुग में संभव नहीं है, तो इसलिए कोई ऐसा साधन होना चाहिए जो इसके इन विधि विधानों का पालन ना कर पाए व्यक्ति, मान लो वर्णाश्रम को पालन ना भी कर पाए तो भी सिद्धि प्राप्त कर जाए। जैसे प्रभुपाद उदाहरण दे रहे हैं कि संन्यास एक आश्रम होता है, लेकिन आप देखेंगे आजकल केवल गृहस्थ आश्रम होता है और वही सबसे बड़ा आश्रम होता है, वही आश्रम में व्यक्ति मर जाता है, संन्यास लेने के बारे में सोचता ही नहीं है। तो इसलिए कलयुग में इस प्रकार के वर्णाश्रम पद्धति को पालन कर पाना संभव नहीं है। तो इसी कारण से बोल रहे हैं कि आप ऐसा सार बताइए जो लोगों को, ऐसा साधन बताइए जो लोग आसानी से कर सकें, और उस साधन को करके उनकी बुद्धि जो है वह संतुष्ट हो जाए।